नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। जापान की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। देश की अर्थव्यवस्था अभी सुस्ती के दौर में है, जिसके चलते अब जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रह गया है। इस मामले में जर्मनी ने उसे पीछे कर दिया है। जापान अब चौथे पोजीशन पर आ गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में वो जर्मनी की अर्थव्यवस्था के आकार से पीछे रह गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आंकड़े इस बात को दिखाते हैं कि कैसे जापानी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता खो रही है। टोक्यो यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर तेत्सुजी ओकाजाकी का कहना है कि लेटेस्ट आंकड़े कमजोर होते जापान की वास्तविकताओं को दर्शाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया में जापान की उपस्थिति कम होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर कई साल पहले जापान एक शक्तिशाली मोटर वाहन क्षेत्र होने का दावा करता था, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के आगमन के साथ वो बेनिफिट भी प्रभावित हुआ। ओकाजाकी ने कहा कि विकसित देशों और उभरते देशों के बीच अंतर कम हो रहा है। कुछ साल में भारत का वास्तविक जीडीपी में जापान से आगे निकलना तय है। जापान की उम्रदराज आबादी और बच्चों के कम जन्म के कारण जनसंख्या में युवा आबादी की संख्या कम हो गई है। चीन ने 2010 में जापान से अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का तमगा छीन लिया था। तब जापान फिसलकर तीसरे स्थान पर आ गया था। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भी जापान के चौथे स्थान पर आने का अनुमान लगाया था। जापान की वास्तविक जीडीपी पिछले साल कुल 4500 अरब अमेरिकी डॉलर या लगभग 5,91,000 अरब येन थी। जर्मनी ने पिछले महीने जीडीपी 4400 अरब अमेरिकी डॉलर या 45,000 अरब अमेरिकी डॉलर होने की घोषणा की थी। वास्तविक जीडीपी पर कैबिनेट कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर दिसंबर तिमाही में जापानी अर्थव्यवस्था 0.4% की सालाना दर से सिकुड़ गई है, जो पिछली तिमाही से 0.1% कम है। 2023 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले साल की तुलना में 1.9% बढ़ा। जापान और जर्मनी दोनों ने स्मॉल और मिड साइज के बिजनेस के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है। जापान के विपरीत जर्मनी ने मजबूत यूरो और महंगाई से निपटने के लिए ठोस आर्थिक कदम उठाए। कमजोर येन भी जापान के लिए नुकसान की वजह बना। जापान में महंगाई बीते कुछ दिनों में कम हुई है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन रेट केंद्रीय बैंक के 2% लक्ष्य से 15वें महीने भी ऊपर रही है। ऐसे में अब जीडीपी के आंकड़े भी अनुमान से कमजोर रहे हैं। अब देखना होगा कि बैंक ऑफ जापान महंगाई को काबू में रखते हुए घरेलू डिमांड में कैसे बढ़ोतरी करता है। फिलहाल तो इस केंद्रीय बैंक का मानना है कि सैलरी में बढ़ोतरी से कंज्यूमर खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। बेहतर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में जोरदार तेजी दिखी है। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स मजबूत होकर बंद हुए हैं। सेंसेक्स में करीब 250 अंकों की तेजी रही है, तो निफ्टी 21,900 के पार बंद हुआ है। आज ट्रेडिंग में तकरीबन ज्यादातर सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी पर सिर्फ FMCG और फार्मा इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं, जबकि बैंक, फाइनेंशियल, IT, ऑटो, मेटल, रियलिटी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। फिलहाल सेंसेक्स में 228 अंकों की तेजी रही है और ये 72,050 के लेवल पर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 71 अंक बढ़कर 21,911 के लेवल पर बंद हुआ है। आज के टॉप गेनर्स में M&M, NTPC, पावर ग्रिड, SBI, HDFC बैंक, एशियन पेंट शामिल हैं, जबकि टॉप लूजर्स में एक्सिस बैंक, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा और रिलायंस शामिल हैं। घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल संकेत बेहतर रहे हैं। आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिली है। वहीं इसके पहले बुधवार को अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद हुए थे। बुधवार को डो जॉन्स इंडस्ट्रियल में 152 अंकों की तेजी रही और ये 38,424.27 के लेवल पर बंद हुआ। नैसडैक कॉम्पोजिट में 204 अंकों की बढ़त रही है और ये 15,859.15 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि S&P 500 इंडेक्स करीब 47 अंक मजबूत होकर 5,000.62 के लेवल पर बंद हुआ है। अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड अब 4.25% पर आ चुकी है। अब अमेरिकी बाजारों की नज़र आज आने वाले जनवरी के रिटेल बिक्री के आंकड़ों पर होगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।